इब्रानियों बाब 12। हम अपने इतराफ कई ईमान वाले गवाहों को बादल की तरह पाते हैं। हमें उस चीज को फेंक देनी चाहिए जो हमें रोकती है और गुनाहों से दूर रहना चाहिए जो हमें आसानी से घेर लेते हैं, और हमें सब्र के साथ दौड़ में शामिल होना चाहिए जो हमारे सामने है। हमें अपनी नज़रें मसीह पर रखनी चाहिए क्योंकि हमारा ईमान उसी से है और वह उसको मुकम्मल करता है। उसने हमारे लिए मुसीबतें झेल कर सलीब पर चढ़ गया। उसने वो खुशी जो उसके सामने थी परवाह न करके सलीब पर मरना पसंद किया। उसने सलीब की शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर खुदा के तख्त की दाहिनी जानिब बैठ गया। हकीकत पर गौर करो, मसीह ने गुनहगारों की इतनी बड़ी मुखालिफत को सब्र से बर्दाश्त किया ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत न हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। तुम हिम्मत अफजाई के लफ्ज को भूल गए हो जिसमें बेटों की तरह बुलाया गया।
अरे मेरे बेटे, खुदावंद की तंबिया को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे सही रास्ते पर लाने के लिए मलामत करे तो पस्त हिम्मत ना हो। खुदावंद उस इंसान को ही डांटता है जिससे वो मोहब्बत करता है, और जिसे अपना बेटा बना लेता है उसको सजा भी देता है।
तुम सजाओं को बर्दाश्त करो जिससे साबित होगा कि खुदा तुमसे बेटे का सुलूक कर रहा है। खुदा उसी तरह लोगों को सजा देता है जैसे कोई बाप अपने बेटे को सजा देता है। हर बेटा अपने बाप से सजा पाता है। अगर तुम्हें सजा नहीं मिली जो हर बेटे को मिलती है, इसका मतलब है कि तुम उसके नाजायज बेटे हो, उसके हकीकी बेटे नहीं हो। यहाँ जमीन पर जब हमारे जिस्मानी बाप तंबिया करते तो भी हम उनकी ताजीम करते रहे, तब तू क्या रूहों के बाप की उससे ज्यादा ताबेदारी ना करे ताकि हमें जिंदगी मिले। हमारे बापों ने हमको थोड़े अरसे के लिए हमें सजा दी। उन लोगों ने हमारे बेहतरी के लिए ऐसा किया, लेकिन खुदा ने सजा देकर हमारी मदद की ताकि हम मुकद्दस हो जाएं। जब हमें सजा दी गई तो हम लोगों ने खुशी नहीं मनाई, बल्कि सजा पाना तो दर्द से भरा हुआ था। लेकिन सजा पाने के बाद हम लोगों ने सजा से सबक सीखा। हम लोग अमन व अमान में हैं क्योंकि हम लोगों ने सीधी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी है। बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो, रास्तबाजी की जिंदगी गुजारो ताकि ठोकर खा के गिर ना पड़ो, ताकि तुम्हारी कमजोरी से तुम्हें नुकसान ना पहुँचे। सलामती से सब लोगों के साथ रहने की कोशिश करो और मुकद्दस जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। अगर किसी की जिंदगी मुकद्दस ना हो तो वो कभी खुदावंद को ना देखेगा। इसलिए होशियार रहो कि कहीं खुदा के फजल से महरूम ना रहो। ऐसा ना हो कि कहीं कोई कड़वाहट की जड़ तुम्हारी जिंदगी में परवान चढ़े और कोई मसला पैदा हो जाए और लोगों को निजस न कर दे। किसी को हरामकारी के गुनाह करने दो और होशियार रहो। और उसने महज एक वक्त के खाने के लिए अपनी पैदाइशी हक को बेच दिया। और याद करो कि यीशु ने ऐसा करने के बाद अपने बाप से बरकत चाही, लेकिन उसने इनकार कर दिया। हालांकि उसने रोकर मांगा था, यीशु ने जो किए थे उसमें तब्दीली नहीं की। तुम एक नए मुकाम पर आए हो और ये मुकाम उस पहाड़ के मानिंद नहीं जहां बनी इसराइल आए थे। तुम उस पहाड़ पर नहीं आए जिसे छुआ जा सकता था और आग से झुलस जाता था। तुम उस जगह नहीं आए हो जहां तारीकी, काली घटा और तूफान है। उस जगह बिगुल का शोर नहीं या फिर आवाजों का शोर नहीं। जब लोगों ने आवाज सुनी तो वह डर गए और उन्होंने कहा वो उससे दूसरा अल्फाज सुनना नहीं चाहते क्योंकि वह हुक्म को बर्दाश्त न कर सके।
अगर कोई चीज, हत्ता की एक जानवर भी उस पहाड़ को छुए तो उसे संसार किया जाना चाहिए।
वो मुकाम ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा
मैं खौफ से कांप रहा हूँ।
बल्कि तुम उस किस्म के मुकाम पर नहीं आए हो, तुम जिस नए मुकाम पर आए हो वो कोहे सियून है, खुदा के शहर आसमान के यरूशलेम में आए हो, जहाँ हजारों फरिश्ते खुशी के साथ जमा हैं। तुम तो खुदा की पहलौठे औलाद की मजलिस में आए हो, जिनके नाम आसमान में लिखे हैं। तुम खुदा के पास आए हो जो सबके साथ इंसाफ करने वाला है, और उन रास्तबाजों की रूह के पास आए हो जिन्हें कामिल कर दिया गया है। तुम यीशु के पास आए हो जो खुदा के नए अहदनामे की सालस है, और तुम छिड़के हुए उस खून के पास आए हो जो हाबेल के खून से बेहतर बातें कहता है। होशियार रहो, और जो कोई भी कहे तो उसको सुनने से इनकार मत करो। उन लोगों ने उस वक्त सुनने से इनकार किया और बुरे बन गए थे। जब उसने जमीन पर उन्हें इंतबाह किया था तो वह बच न सके थे। अब खुदा आसमान से कह रहा है, इसलिए अगर वह सुनने से इनकार करेंगे तो वह भाग नहीं सकेंगे, उन्हें सजा मिलेगी। पहले जब खुदा ने कहा तो जमीन दहल गई थी, और अब तो उसने वायदा किया है कि
एक बार फिर न सिर्फ जमीन बल्कि आसमान को भी हिला दूंगा।
ये अल्फाज एक बार फिर हमको साफ इशारा देते हैं कि तमाम चीजें जो तकलीफ हुई हैं वो निकाल दी जाएंगी, क्योंकि सिर्फ वही चीजें कायम रहेंगी जो हिलने वाली नहीं है। बस हमें शुक्रगुजार होना होगा कि हमने जो बादशाहत ली है वो नहीं हिलाई जाएगी। हमें शुक्रगुजार होना होगा और इस तरह खुदा की इबादत करनी होगी जिससे वो खुश हो जाए। हमें उसकी इबादत ताजीम खौफ से करना होगा। हमारा खुदा आग की मानिंद है, हर चीज को जलाकर राख कर देगा।